साथ सुख सामर्थ्य में विश्वास, कहे हैं हमें उनमें विश्वास। जब उसने कह दिया मैं हूँ तुम चिंता न करो, फिर भी हम करते हैं ना, गौर सामने रखा होगा बाबा वाला, मैं बैठा हूँ, कह देते हैं तुम बैठे रहो, चिंता तो हम करेंगे। तो बाबा के शब्दों में भी विश्वास नहीं रहता है ना, ये विश्वास, ये निश्चय बाबा के शब्दों में, निश्चय बाबा की सामर्थ्य में, निश्चय। और निश्चय चाहिए स्वयं में, हम भी शक्तिशाली हैं, है या नहीं? भगवान के बच्चे, उसने हमें रोज याद दिलाया है, कौन हो तुम? मास्टर सर्वशक्तिमान हो, रोज या सबसे ज्यादा स्वमान यही आता है वरदानों में, अव्यक्त मूल्यों में। हमें बाबा हमारी शक्तियों की बहुत याद दिलाता है। तो जरा सोचेंगे, हमें अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाना है, बना है या नहीं? क्या है हमारी यादगार? अचलगढ़ है। गई है कभी कुमुद डॉक्टर? नहीं गई है, यादगार से ही नहीं गई। बहने गई है? नहीं गए होंगे, बहुत कम गए। गुरु शिखर जहाँ है ना, उसके दूसरी तरफ अचलगढ़ है, जैनियों के मंदिर है ये। ऊपर पहाड़ी ऐसी ऊंची है कि हम भी जब छोटे थे तभी गए थे, जब कभी पार्टी में आए थे एक बार सब गए थे, फिर बाबा अव्यक्त हुए एक बार सब गए थे, उसके बाद तो टांगे दुखती है वहाँ चढ़ने में, क्योंकि बहुत ऊंचाई है। ट्रोली वाला अभी भी 300 रुपए लेता है। हम एक दिन गए, अभी सोचा एक बार तो देखा है, कोई नया बनाया होगा। ट्रोली वाले से पूछा कितना? 300 रुपए। हमारी जेब में थे ही नहीं 3 रुपए भी, हमने 100 रुपया। तो हमारी यादगार अचलगढ़ और दूसरा में असल स्थिति की यादगार अंगद है। और एक सुंदर सी यादगार है, वो बताओ जरा, देखो किसको याद आती है? सुशील को याद आ जाएगी। यादगार है हमारी अचल अडोल स्थिति की, और उसे ही हमें अपने सामने रखना है। महाविष्णु शेष सैया पर याद आ गया बहन जी को, शेष सैया से लेकर हुए महाविष्णु जी, देखो क्या क्या है उनमें, मगन है, गीता ज्ञान में मग्न। दूसरा सांप क्या बन गए? शत्रु छाया बन गए, लेटने की सैया बन गए। जो विषय ले थे, जो परेशान कर रहे थे, इन्होंने अशांत किया जीवन को, वो अब शत्रु छाया बन गए। सागर में लहरें उठ रही हैं, विष्णु जी मस्त आराम फरमा रहे हैं। वहाँ इसके मंदिर में, पुरी में मंदिर है ना जगन्नाथ का, देखा वहाँ दीवार बनाई हुई है, सागर के किनारे है वो, सागर के किनारे दीवार बना दी है। क्यों बनाई, उसकी कहानी क्या है पता? छठलाल भाई के ये जो सागर है, इसमें ऊंची ऊंची लहरें उठती थी, उससे विष्णु जी को नींद खराब होती थी, तो दीवार बनवाई। मैंने कहा दीवार से लहरों की आवाज रुक गई थी, दीवार तो 6-7 फुट होती है बस, इसलिए जैसी दीवार चौड़ी बना दी उससे आवाज रुकी। भक्तों की ये सब कहानी है। तो मैं सोचता था जो विष्णु जी सागर की लहरों में मस्ती से विश्राम कर रहे हैं, उनको यहाँ की सागर की लहरें परेशान करेंगी क्या? शेष सैया पर विराजमान, विघ्न और परिस्थितियों में अचल अडोल, सागर की लहरों में अचल अडोल। वहीं से आप देखो ध्यान से, कहीं आप ये चित्र देखें, बहुत चित्र बने हुए साउथ में, तो मंदिर है ऐसे बड़े बड़े, है कोई साउथ की? मैंने हमने तो देखे हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। हम तो एक दिन रात को यात्रा कर रहे थे गाड़ी से, जिसने रोका, जिसमें जी का बहुत लंबा चौड़ा 100 फुट का होगा मार्बल का बनाया जा रहा था, कहाँ था हमें याद नहीं। और क्या है विष्णु जी के साथ, लक्ष्मी चरणों में अर्थात प्रकृति संपूर्ण संपदा चरणों में, जिसकी स्थिति अचलडोल होगी, धन संपदी संपदा की उसको कोई कमी नहीं होगी, उसकी बस केवल स्थिति को अचल अडोल बनाए। भाइयों के लिए बहुत अच्छी बात है, धन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, ज्ञान धन बढ़ाए, स्थिति को अचल अडोल बनाए तो बहुत अच्छे अनुभव होने लगेंगे। अभी सच्चाई स्थिति के लिए एक महावाक्य और सुना दूं बाबा का, बहुत पावरफुल, तो मुझे बहुत याद रहा, 10 साल से याद रहा है। तुम अचल अडोल स्थिति के आसन पर बैठे रहो तो समस्याएं इस आसन के नीचे दबकर नष्ट हो जाएंगी। रहस्य यही है, जब मनुष्य अचल नहीं रहता तो उसके संकल्प बहुत चलते हैं, और संकल्प बहुत चलने से शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। और जब छोटी सी बात उसके सामने आए, किसने कुछ कह दिया, स्थिति डावाडोल, बात कुछ भी नहीं, उसको मुस्कुरा के पूरी कर दी जा सकती है। छोटी छोटी बातें होती हैं, तो हमें अचल अडोल बनना है। पहली बात, ये लक्ष्य होना चाहिए, बोलने वाले बोलते रहें, निंदा करने वालों को करने दो, संचार है करने दो या क्यों करते हैं, करने दो, हमें तो अचल अडोल रहना है। माताएं के बीच में जो जगह वो भर दो बहने, मैंने तो थोड़ा जगह भर दो जो खाली है, लेट आने वाली माताओं को भी मिल जाए थोड़ी जगह। माताएं सोचती है ना, आवाज कब आए क्लास की तो हम चले, हो जाओ बीच हट जाओ। बाबा जब साकार में थे ऐसे ही होता था, तो इधर बैठते थे, इधर कन्या सब यहाँ बैठते थे, आगे ये सब नहीं होता था, कन्याओं की ये जगह थी बाबा के, इधर इधर होता था माई का दी का सब, ये जो है ये इधर था। तो संकल्प कर ले, मुझे अचल बनना है। सबसे सुंदर बात है ये जीवन की, संकल्पों में बहुत पावर है। एक व्यक्ति ये सोचे कि लोग बहुत बोलते हैं, यहाँ तो संगठन में रहना बड़ा कठिन, बहुत बोलते हैं, और दूसरा सोचे बोलने दो मुझे अचल अडोल रहना है, कौन पावरफुल बनेगा, भागने वाला या पैर एक जमा देने वाला अंगद की सर है। तो ये सोचकर अपने को कमजोर नहीं करना है कि लोग बोलना बंद कर दें, ये भी नहीं सोचना है कि जीवन में अभिहन बाधाएं आए रही आएंगी, क्योंकि उनके बीच हमने बोए हुए हैं। और बाबा जिसको शक्तिशाली बनाना चाहेगा उसके आगे विघ्न आएंगे, क्यों आएंगे, शक्तिशाली बनने का यही तरीका है। सोचें, अच्छी तरह विचार करें। मैं तो हमेशा प्रेरणा ली, मैंने बीच बीच में देखे, मुझे दिया गया चंद्रगुप्त के सीरियल, मेरा प्रिय सब्जेक्ट था वो, ज्यादा तो मैं नहीं देख सका, कभी कभी मौका मिलता था, 2-4 आ जाते थे, वो भर के दे दिए थे बिना एडवर्टाइज के। मैं उसमें चीज नोट की, चाणक बहुत बुद्धिमान है वो, चंद्रगुप्त की फीस स्थूल रूप में मदद नहीं करता, समस्या है जाओ चले जाओ, विजय यात्रा पे जा रहे हैं, तो कहा कौन किन किन को साथ लो, जो तुम्हारे शत्रु है ना उनको ले लो, जो लड़के शत्रु थे दुश्मनी करते है ना उनको लो,
चंद्र को। क्रिस्टस ने कहा
उनको लो, कहा उनको लो और सीखो उनको मित्र कैसे बनाना है, और वही उसके सदा के मित्र बन गए थे। कहीं भी कठिनाई हो रही निकल जाओ, उसे पता है कि कठिनाई आएगी, जाओ ताकि कठिनाइयों को पार करके वो सम्राट बनने लायक बन जाए। वहाँ से इतिहास बदलाना। उसके बाद भारत पे लंबा समय किसी ने आक्रमण नहीं किया, लंबा काल नहीं किया था, बाद में हुए पृथ्वीराज के बाद। तो मनुष्य को अगर शक्तिशाली बनना है, बाबा जी ने शक्तिशाली बनाना चाहता है, उन्हें भी चाहिए कि हम भी शक्तिशाली बने। बनना है या नहीं? डरेंगे तो कमजोर, आने दो जो कुछ आ रहा है, हमें पार कर लेना है, क्योंकि हमारे साथ पहली चीज हम इस बात को न भूलें, हमारे साथ तो स्वयं भगवान है। ये नशा ही हमारी शक्तियों को बढ़ा देता है। कुछ भी न करें हम, केवल इस नशे में रह जाएं, ईश्वर अपने साथ है। गीत गालियां करो ये बाथरूम में तो कम से कम, है? आदत बना दो इसको, आदत बना दो। ये विनाश काल में हमारे अंदर गूंजने लगे, ईश्वर अपने साथ है। अगली लाइन भी गानी, इसमें जो दो आगे स्तंभ हैं, दोनों में ही बहुत सुंदर ज्ञान है ना, बहुत सुंदर ज्ञान है। उसे सारे को याद कर लें तो अनेक स्थितियों में मन एक रस रहेगा, विचलित होगा ही नहीं। हमारे भाग्य को कोई हमसे छीन ही नहीं सकता, सारा संसार कोशिश कर ले, कोई नहीं छीन सकता भाग्य को। और भाग्य से ज्यादा भी नहीं मिलेगा, कोई चोरी कर ले, डाके डाल ले, दूसरों को धोखा दे दे, भाग्य से ज्यादा भी नहीं मिलेगा। तो अचल रोल बनने के लिए हमें ड्रामा के ज्ञान को यूज करना है। मैंने टीचर बहनों को कहा था, अब सब आ गए हैं, लेट आने वाले भी आ गए, 10 पॉइंट निकालेंगे ड्रामा की, जिससे हम अचल अड़ोल रहे हैं। अचल पॉइंट्स में निकालेंगे, उन्हें यूज करेंगे। चलिए पहली पॉइंट, सब पॉइंट्स निकालें ड्रामा को, हम कैसे कैसे यूज करेंगे ताकि हमारी मन की शक्तियाँ भी बहुत बढ़े और हमारी स्थिति भी बहुत अच्छी रहे। एक बात सुनाता हूँ मैं, बहुतों को पास्ट ज्यादा याद आता है और पास्ट याद आने से वर्तमान कमजोर होता रहता है। योग में बैठे आ गया कुछ याद, आधा घंटा उसी में बीत गया, याद भी आधे घंटे बाद आया कि योग करना था, ये क्या हो गया मुझे। बहुत लोग ऐसा सुनाते हैं, पास्ट में चले गए, होने लगे अनेक क्वेश्चन आंसर अपने ही मन में उल्टे सीधे। क्या याद करेंगे ड्रामा की बात इसके लिए, ताकि पास भूल जाए। फिर होगा ना तो परेशान हो जाएंगे। और कुछ बताओ? नहीं, पास के बाद जो भी था वो अच्छा, पर वो तो खराब था ना, अच्छा कहाँ था। मेरा अपना बोया बीज था, उसका फल मुझे मिला था। ये भी बात मन को परेशान करेगी ना, क्यों ऐसा बीज बोया मैंने, क्या हो गया था मुझे। बात यही कि वो पास्ट हो गया, वो जैसा भी था अब वो दोबारा इस कल्प में तो नहीं आएगा ना, ये ना सोचो तो फिर आएगा इस कल्प में, वो दोबारा नहीं आएगा। और उसको आने में भी तो कितने साल लगेंगे, लगभग 5000 साल। तो अभी से परेशान क्यों हो, तभी देखिए ना जब आएगा, तभी याद नहीं होगा। इसलिए जब पास्ट हो गया, ये सोच करके वो बुरा हो गया, उसको हम बदल नहीं सकते। जो भी हुआ, अच्छा हमने किया, बुरा किया, किसी ने किया, खत्म। जिसने किया हो उसके बारे में कुछ चलता, उसे क्षमा दान दे दें, اپنے چت کو ہلکا کر دیں, کسی کو دعائیں دے دیں, خود اس کی جگہ اچھے کو بھی پھر سنکلپ کر لیں. دوسری بات پر چلو, اب سنائیں گے آپ. یہ ڈرامہ کلیان کاری ہے, جو ہو رہا ہے اور جو ہونے جا رہا ہے واسطوی کلیان کاری ہوتا ہے. سانی سناؤ, کل ایک کا فون آ رہا, پرسوں رات کو آیا ایک یوک, کہا میری شادی 4 سال پہلے ہوئی تھی, پتنی آئی فریڈم فائٹر, ایک بچہ 3 سال کا. اب لڑتی تو خود تھی لیکن ہمیں, میں اور میری ماں دونوں کو کہتی کہ تم میں سے بہت لڑتے ہو دونوں, میں تمہارے پاس نہیں رہوں گی, اپنے گھر چلی گئی. اب بیچارہ پریشان, میں دوبارہ اس کو لانا چاہتا ہوں. میں نے پوچھا کیا نہیں کرتے آئے ہو, 4 ماس ہوئے ہیں بس. میں نے کہا دوبارہ لانا چاہتے ہو, پھر لڑے گی وہ تم سے, لڑائی اپنے گھر میں لانا چاہتے ہو, پھر کیا کریں, لانا تو پڑے گا. میں نے کہا پہلا کام کرو, اس کو من سے دھنیواد دو کہ اگر تم نے لڑائی کرتی تو مجھے بھگوان نہ ملتا. بڑا خوش ہوا, جو رو کے بات کر رہا تھا آنندت ہو گیا, یہ بات تو بڑی اچھی. میں کہا سچے من سے روز سویرے اٹھ کر اسے دھنیواد دو, اس کا من بدل جائے گا. تمہارے کارن مجھے بھگوان ملا, پر سوچ لو اس کے آنے سے بھگوان چھوٹ نہ جائے, تم سوچ لینا. پھر کل سویرے پھر فون آیا, میں نے بات کی کہ بھائی جی اس کو بلانا چاہیے یا نہیں. میں نے کہا تمہیں سوچنا ہے, میرا سبجیکٹ نہیں ہے. میں نے اس کو کچھ اچھی ودھی بتائی, تو لڑائی کلیان کاری ہوئی یا نہیں. اس کا کلیان تب دیکھا جب یہ سمجھ میں آ گیا کہ بھگوان ملن ہو گیا, ستیہ گیان مل گیا, جیون دوسرا ہی ہو گیا. میں نے اس سے پوچھا آپ جیون کو انجوائے کر سکتے ہو اپنی ماں کے ساتھ ہی, بالکل اب تو آنند آ گیا جیون میں. کلیان کاری ہوتی ہے بات, کچھ جھگڑے ہمارے آپسی حساب کتاب کو پورے کر رہے ہیں, اس لیے کلیان کاری ہے کہ قرض اتر رہا ہے. ایک اچھی بات اور سنا دینا چاہتا ہوں آپ کو, میری وہ سب کو سنانے کو من کرتا ہے آج کل, بات کل کی ہے. ایک ماتا ہمارے یہاں سیوا میں آئی ہوئی ہے, ونگس کے پروگرام چلے نا, ماتا بہت ساہوکار گھٹی ہے. کہا ہماری فیکٹری پر بدماشوں نے قبضہ کر لیا تھا, کہا یہ تھا کہ ہم کرایہ دیں گے فیکٹری کا, چلائیں گے ہم, پھر کرایہ بند کر لیا, ہم کیا کریں کیا کریں. تو 3 ماہ پہلے اس نے مجھے فون کیا ہوگا, میں نے یوگ کرنے کو کہا 1 گھنٹہ روز اور کچھ سامان بتائے, تو بتایا کہ 3 ماہ ہوئے اور اس وقتی کا ہمیں فون آیا کہ اپنی فیکٹری لے لو. ابھی کی بات ہے یہ, پچھلے ماہ کی, کہا فیکٹری ہمیں مل گئی. تو یہ اتنی اچھی چیز ہے یوگ کی شکتی, جیون کی ہر سمسیا کو یوگ شکتی سے, سوان کے بل سے, سبھاوناؤں سے ٹھیک کیا جائے. وہ چیزیں میں یاد دلاتا ہوں سبھی کو, جتنا دیہ سے نیارے بنیں گے اتنا ہی سب کے پیارے بنیں گے. جھگڑوں کی سمسیا کا طریقہ, گھر گھر میں جھگڑوں کی سماپتی کریں اس بات سے. دوسری بات, سوان میں رہیں گے تو سمان پرچھائی کی طرح آگے پیچھے آئے گا. سمان نہیں ہوتا نا تو جھگڑے ہوتے ہیں. بچے آپ کا سمان کریں گے, بہو آئی ہے وہ سمان کرے گی, اچھی استھتی ہو جائے گی. ایک ہنسی کی بات اور سنا لو, پرسوں یہ فون اور آ رہا, بیچاری ایک ماتا جی بزرگ ساس, لڑکے کی شادی ہوئی تھی, بہو بہت تیز آئی ہے, بہت لڑتی ہے, جینا مشکل کر دیا ہے. کہا میں کیا کروں, میں اس کے لیے کچھ بھی کروں گی تو بدنام ساس ہیں, سب کہیں گے اس کی غلطی ہے. ہم کب تک سہن بھی کریں, کچھ کر نہیں سکتے, لڑکا بہت ہمارا جینٹل ہے, بےچارا دکھی ہو گیا ہے کہ کیا کریں اس کا. ہنسی کی بات سنا رہا ہوں, وہ کہہ رہی کہ سارا دوست میرے پہ آئے گا, میں کسان ہوں, اس کو میں نے 2 چیزیں سکھائی.
de ese nare aur suman. To kya ho jayega aapas mein aur usko ek achhi atma ki drishti se dekhna. Ki ye atma bahut achhi hai, ye ladaku hai ye nahi. Bahut achhi hai. To vibration se uski bhavnaen, uske vyavhar, vichar badal jayenge. Chalo drama ki teesri baat ab behne batayenge. Bolo. Drama ki 10 baat nikalni hai. Drama mein har atma ka apna apna part hai. Isliye sab nirdosh hai. Ye bahut sundar point hai. Aise hi drama mein har ek atma ka apna apna bhagya hai. Kisi ke liye hame chinta karne ki zarurat nahi. Ab dekho aajkal kya hota hai. ये तो नेचुरल है. एक माँ बाप को दो बच्चे हैं. माँ बाप चिंतित हैं, हम इन्हें पढ़ाए लिखाए बड़ा करें ये करें ये करें. तो सोचते हम नहीं होंगे तो क्या होगा. लेकिन मृत्यु हो जाती है. बच्चे छोटे अकेले रह जाते हैं. कोई नहीं होता उनको. दादा दादी कोई नहीं. क्या बच्चों की पालना नहीं होती. क्या अनुभव है. होती है कोई न कोई. या तो उनका ही संबंधी उन्हें ले जाएगा. हम इनकी संभाल करेंगे या कोई और. हरेक का भाग्य अपना अपना है. आगे चले पांचवी बात. नथिंग न्यू. क्या याद रखेंगे इसके साथ. वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था. नथिंग न्यू. बहुत अच्छी बात रहेगी हम सबके लिए. विनाश काल में इसका बड़ा महत्व रहेगा. देखो ये विनाश बाबा ने और हम सब ने कितनी बार देखा होगा. अनेक बार में से थोड़ी सी गिनती कर लो. अगर 100 बार भी देखा हो तो 100 बार देखी हुई चीज को फिर देखना कैसा लगता है. मन नहीं करता देखने को. लेकिन ये तो ऐसी चीज है मन करे या ना करे देखना तो करेगा ही. हाँ आँख बंद कर सकेंगे. कान बंद कर लेंगे. टीवी बंद कर देंगे. समाचार बंद कर देंगे. प्रभाव आएगा उसका. तो जो कुछ हो रहा है वही जो कल पहले हुआ था. छठी बात. ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है. वही हो रहा है जो होना चाहिए. जो सत्य है. क्योंकि सब कुछ कर्मों के अनुसार हो रहा है. आगे चल के ऐसे सीन भी आएंगे जिसमें सबको लगेगा ये क्यों. सरकारें भी कुछ काम नहीं कर पाएंगी. प्राकृतिक प्रकोप के आगे सब हाथ खड़ा कर देंगे. शहर के शहर नष्ट हो गए. सड़कें इतनी टूटने लगी कि उनको बनवाए एक बनवाए चार टूटे. चार बनवाए 100 टूटे. कुछ नहीं कर पाएंगे. फिर बनवाना ही छोड़ देंगे. सबको लगेगा. अब सातवीं बात इसी से जोड़ दो. क्या नहीं उठना चाहिए मन में. क्या क्यों नहीं. पक्का कर लो अभी से. क्या क्यों नहीं. क्यों हो रहा है. ये भी लोग कहेंगे बाबा मदद क्यों नहीं करता. इस विनाश को रोके. हमारा इतना अच्छा घर टूट गया. सेंटर भी टूट सकेगा. संभव होगा. लेकिन अगर सेंटर की वाइब्रेशंस बहुत अच्छे होंगे तो नहीं टूटेगा. पता है ना ये बात. अगर बाबा से कंबाइंड रूप में रहेंगे तो प्रकृति मदद करेगी. टूटेगा ही नहीं. पानी भी भरपूर आएगा. भोजन भी फुल रहेगा. और वो अनुभव होगा बिल्ली के बच्चे आग में भी सुरक्षित. ये अनुभव होगा कि हमें कुछ नहीं होता है. लेकिन जिनकी स्थिति अच्छी होगी जो परेशान हो गए हो उन्हें स्वस्थ होंगे. पानी भी नहीं मिलेगा. बिजली भी नहीं आएगी. तो है केवल बिजली के. देखो बिजली फेल हो जाए तो दुनिया का हाल कैसा. क्या क्या बंद हो जाएगा.
शायद ये कहें जीवन ही नहीं रहेगा, केवल बिजली। न टीवी चलेगी, न कंप्यूटर चलेंगे, एक दिन में चार्ज किए हुए खत्म हो जाएंगे, न पानी आएगा, रात को अंधेरा, मच्छर काटेंगे, गुड नाइट नहीं जलेगी, गर्मी लगेगी, कितनी समस्या बिजली जाने से हो जाएगी। और अगर अमेरिका में चली जाए तो वहाँ तो ऐसे मर जाएंगे, बर्फ बहुत गिरती है, अंदर बंद रहता है सब कुछ, बर्फ इतनी गिरती है कि उसके बिना रशिया, अमेरिका, कनाडा, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें जी ही नहीं सकते, मर जाएंगे लोग फटाफट। तो ऐसे में पूरे ठंडे हो जाएंगे, ऐसे में अचल स्थिति वाले सुखी रहेंगे। स्थिति अच्छी है तो मच्छर भी आएंगे नहीं, बिल्कुल गर्मी होगी नहीं, प्रकृति शीतल वातावरण कर देगी। ये होगा श्रेष्ठ स्थिति से। आगे चलो आठवीं बात, ये ड्रामा भगवान को पसंद है इसलिए मुझे भी पसंद है, आगे भी बोलो, इसलिए हमें भी पसंद है, साक्षी होकर देखना है। नौवीं बात, हम ड्रामा में हीरो पार्टधारी हैं, ड्रामा में हम भी तो है ना, हमें अपने पार्ट का वैसे ही ध्यान रखना है जैसे हीरो ध्यान रखते हैं। हमारे पार्ट को सारा संसार देखता है, हम बहुत भाग्यवान भी हैं। हीरो पार्टधारी किसे कहते हैं? हीरो पार्टधारी केवल आदि से अंत तक जो अपने रोल पे ध्यान दे। और बोलो, इतिहास में हीरो पार्टधारी किसे कहेंगे? जिन्होंने भिन्न भिन्न समय पर हीरो पार्ट बजाए, वो है हीरो एक्टर। वो हम पे सही है बहुत सारे। अब अभी देखो, मान लो महात्मा गांधी था, वो ज्ञान में होया हो हमें पता नहीं, पर हीरो एक्टर है ना, भक्ति को एक अच्छा सहारा देने वाले, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, उस समय के रैदास और मीराबाई, और साउथ में एक ही साथ भक्ति की लहर चली थी ना, ये भक्ति के हीरो एक्टर हो गए। क्योंकि अगर ये ना होते तो क्या हो जाता? नहीं, कुछ और हो जाता। मुस्लिम प्रभाव इतना बढ़ता जा रहा था, सत्ता उनके हाथ में थी, अनेक हिंदू मुस्लिम बनते जाते, क्रिश्चियन बनते जाते बाद में। तो हिंदू धर्म को बचाने के लिए देखो, जैसे स्वामी विवेकानंद आए, स्वामी दयानंद आए, कुछ पावरफुल लोग हुए हैं बंगाल में उसी समय, कई अच्छे विद्वान और अच्छे जिन्होंने धर्म को बल दिया, ऐसा कहेंगे हुए, इनको हीरो एक्टर कहते हैं। इतिहास में जिनके बहुत नाम है, जिन्होंने भारत की सुरक्षा की, जिनसे वो लोग डरते थे जो भारत के लिए कुछ बुरा करें, तो ये सब हीरो एक्टर है। वो कहाँ है? इसी वाल में बैठे। तो अपनी हिस्ट्री को महान बना दो, जो बहुत अच्छे योगी बनेंगे, जो बहुत अच्छे पवित्र होंगे, जिनको अपने देश से बहुत प्रेम होगा। आप अपने अंतर में झांक कर देख सकते हैं, हमें देश से प्रेम है या आप अपने परिवार में उलझे हुए हैं? देश के लिए हम कुछ करने का संकल्प रखते हैं क्या मन में? वो हीरो एक्टर बनेंगे। जिनके अंदर प्योरिटी की पावर होगी वो धर्म के क्षेत्र में, जिनके अंदर योग की शक्ति होगी वो इतिहास में हीरो एक्टर रहेंगे। तो वो हम सब हीरो एक्टर भी हैं। और आगे चलो ड्रामा में, हैं? ड्रामा माँ क्या करेगी? माँ पालना पालना करेगी। और बोलो, जो कुछ भविष्य में होगा उसके बारे में सोचो। जो भविष्य में होगा वो फिक्स है, निश्चित है भविष्य, इसलिए भविष्य की चिंता नहीं। प्रयास तो करेंगे लेकिन चिंता नहीं होगा, वही जो फिक्स है ड्रामा में। और भी कुछ बातें हैं? दस तो हो गई, किसी को और कुछ याद आता हो?
हाँ ड्रामा बहुत, इसमें न्याय है, समानता है, सबको समान चीजें मिली हुई है। गड़बड़ अगर की है मनुष्य ने की है। और बोलो, अब एक चीज और मुझे याद आ गई, ड्रामा कहाँ पहुँच गया? बिल्कुल अंत में पहुँच गया ना। ड्रामा अब अंतिम सीन दिखा रहा है और सभी को भी फ्रेंड थोड़ा चला देंगे और लोग बैठे, सभी को, सभी को नहीं हवा तो चाहिए, सभी को ड्रामा अंत सीन दिखा रहा है तो सभी को घर जाना है। सब एक्टर्स ड्रेस उतार कर वापिस चलेंगे और ड्रामा में एक अंतिम सीन बहुत सुंदर होने जा रहा है। बताओ क्या होगा? ड्रामा हर फिल्म या ड्रामा जो बहुत सुंदर होगी उसका अंत बहुत प्रभावशाली होगा, ताकि लोग सोचते हुए घर जाएं, उसके प्रभाव को लेकर घर जाएं। होता है या नहीं? मैंने फिल्में नहीं देखी पर मैं समझता हूँ यही होता होगा। बताओ ड्रामा का अंतिम सीन क्या है? केवल विनाश नहीं, हीरो एक्टर स्टेज पे प्रख्यात होंगे, बाबा का नाम रोशन होगा, 8 रत्न और 108, विशेष 108 रत्न वर्ल्ड की स्टेज पर आएंगे, सारा संसार उनको जानेगा, विशेष रूप से 8 रत्नों को सारा संसार स्वीकार करेगा, क्योंकि वो सारे संसार के इस देव हैं, इस देविया हैं। इसलिए आप देखें, अगर मैंने देखा नहीं पर मुझे पता है हर धर्म में 8 की माला अवश्य होती है, माला होती है ना मनुष्यों की, छोटी सी जो कोई यहाँ पहन लेता है, कोई हाथ में रखता है, 8 की माला अवश्य होती है। तो ड्रामा का अंतिम सीन भी बहुत सुंदर होगा, वो आत्माएं पछताएंगी जिन्होंने भगवान को पाकर कुछ नहीं किया, और वो आत्माएं अतिंद्रिय सुखों में रहेंगी जिन्होंने समय को सफल किया। सब सोच लेना है हमने अपना जीवन कैसे बिताया और आगे का संगम युग कैसे बिताएंगे, ताकि हम पश्चाताप करने वाले नहीं, हम कौन हो, अपने भाग्य के गुणगान करने वाले, बाबा की शुक्रिया करने वाले, हमने तुमसे सब कुछ पाया, ये गीत गाते हुए हम वापिस जाएं। क्या विचार है कुमारों का? गीत गाते हुए जाएंगे या कहीं रुकेंगे? मुझे याद आ रही है कल की एक बात, एक टीचर बहन अपने भाई को ले आई, ये मेरा भाई है बहुत परेशान है, पूछा मैंने उससे, नींद नहीं आती मुझे रात को, जब नींद नहीं आती तो कुछ कारण तो होता है ना, तो मेरे पास ऐसे लोग आते हैं नींद नहीं आती तो मैं उनसे, उन्हें सबको अलग कर देता हूँ, उसे अकेले में पूछता हूँ हुआ क्या, तब सारा भेद खोल देते हैं कि ये हुआ, उसने बता दिया बेचारी चलिए कुमारों से पूछ रहा हूँ कहीं अटकना है या बाबा के गुणगान करते हुए जाना है, बाबा के गुणगान करते हुए, जीवन को भरपूर अनुभव करते हुए हमें वापिस जाना है, खाली नहीं जाना है। ये हमारे जाने से पहले के सीन बहुत सुंदर होंगे, उसको अपने विजन में लाओ, चित्र बनाओ एक, अब से ये पुरुषार्थ का समय बस थोड़ा ही बचा है, मुझे लगता है 2-3 साल पुरुषार्थ तो अंत तक चलेगा जब तक शरीर छूटे, पर जो रेस चल रही है उसका समय बहुत थोड़ा बचा है, उसके बाद महान आत्माओं को संसार की सेवा करनी होगी, जैसे आप टीचर रहने अब सेवा करती हैं अपने सेंटर की, किसी को कोर्स देंगे या कहीं तक पर सेवा करेंगे, लेकिन फिर सेवा करनी पड़ेगी सारे संसार की दृष्टि से, वाइब्रेशन से। तो मैं बता दूं, किसी ने पूछा अभी दो तीन पहले आया था, वृत्ति से वायुमंडल को चेंज करने वाले कर्म योगी भव वरदान था ना। तो वृत्ति क्या, और हम अपनी कौन कौन सी वृत्ति बनाए जिससे वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली फैलते रहें। जैसे आप सब यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ हूँ, मुझे ये वृत्ति रखनी चाहिए। टीचर बहने जब स्टेज पे बैठे हैं, सबको देख के ये वृत्ति रखेंगे, ये सब देव कुल की महान आत्माएं बैठी हैं। देखना वाइब्रेशंस, आप अपने अपने सेंटर में अपने साथियों के लिए संकल्प कर दो, हमारी सब साथी बहने ईष्ट देवियां हैं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। देखो कैसे वाइब्रेशंस बनेंगे, इसको वृत्ति कहते हैं। वृत्ति माने इंग्लिश में इसका शब्द है एटीट्यूड, दृष्टिकोण, सरल हिंदी शब्द है। कहीं भी आप पब्लिक में प्रोग्राम कर रहे हैं, ये संकल्प रखो मैं पूर्वज हूँ, ये सब हमारी वंशावली आई है, आत्माएं सब हमारी वंशावली है, ये हो गई आपकी श्रेष्ठ वृत्ति। इससे वाइब्रेशंस बहुत सुंदर पहुँचने लगेंगे सबको। तीसरी चीज, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मुझे तो सबके कल्याण का काम बाबा ने सौंपा है, मैं किसी के लिए नफरत करना ईर्ष्या द्वेष कैसे रख सकती हूँ, जिनका मुझे कल्याण करना है मैं उन्हें कष्ट कैसे दे सकती हूँ। ये हुई कल्याणकारी वृत्ति, वाइब्रेशंस बहुत सुंदर हो जाएंगे। चौथी बात, मैं तो अवतार हूँ इस धरा पर, मैंने अवतार लिया है बाबा के साथ प्रकृति को पावन बनाने का, संसार की सभी आत्माओं को दुखों से मुक्त करने के लिए अवतार लिया है। तो पवित्र वाइब्रेशंस फैलने लगेंगे, इन्हें वृत्ति कहते हैं। और किसी विशेष समाज के लिए हम सोचे ये बड़े खराब लोग हैं, बड़े पापी हैं, ये तो सब हिंसक हैं बड़े, इनको पता नहीं कितने क्रिमिनल हैं ये, तो क्या जाएगा दूसरों को, नेगेटिव, ये वृत्ति हमारी नेगेटिव हो गई है। इसलिए बाबा कहते हैं सभी धर्मों की आत्माओं के लिए अपने मन में शुभ वृत्ति धारण करो, चाहे वो कैसे भी हैं, सब हमारी वंशावली है ना। जैसे एक बाप को 5 बच्चे हों, 2 बहुत अच्छे न हों, 3 बहुत अच्छे हों, ये तो चलता है ना। ऐसे तो बहुत कम भाग्यवान मातापिता हैं जिनके सारे बच्चे योग्य हों, आज्ञाकारी हों, चरित्रवान हों, वो तो बहुत भाग्यवान है इस दुनिया में। और ऐसे परिवार भी हैं तो जरूर ना, क्यों हैं? नहीं, ये और रहस्य जो आप सब जानते हैं, परम धाम से कम 5 अरब आत्माएं पिछले 7 साल में केवल, जब हम छोटे थे तो किताबों में लिखा होता था, हमें इतना ही याद है कि विश्व की जनसंख्या 2 अरब है, 60 साल में 5 अरब आत्माएं ऊपर से आई हैं, किसी का पहला जन्म, किसी का दूसरा। तो कैसे होंगे, अगर उनमें गिरावट भी होगी वो भी हल्की सी होगी ना, मान लो पाप भी करने लगे तो वैसे तो नहीं करेंगे ना जैसे पुराने पापी कर रहे हैं, नए पापी तो हल्के ही होंगे। इसलिए बहुत अच्छे लोग भी संसार में दिखाई देंगे, बहुत अच्छे पवित्र आत्माएं, बुद्धिमान, एकदम चरित्रवान, कहेंगे किसी का बुरा करना ही नहीं है, हम तो करते ही नहीं है, हम शायद सोचते होंगे कलयुग के अंत में ये हो ही नहीं सकता, पर आत्माएं पवित्र है ना तो ये होगा। और इस सृष्टि का यही सुंदर विधान है कि इस सृष्टि में सदा ही ऊपर से आत्माएं आती रहती हैं, तो अच्छी होंगी ना।
मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ, कंट्रोवर्सी है, आप ज्यादा परेशान ना होना मेरी बात सुन के, 18वीं सदी तक संसार की आबादी 1 अरब थी, 100 करोड़। 18वीं सदी अभी तो थी ना, अब उससे पहले सोचो 10वीं शताब्दी में, यानी 400 साल पहले, और कितने होगी 770 करोड़, और उसके पीछे चले जाओ 1000, 35वीं सारी दुनिया में फैले हुए होंगे, भारत में रेता के अंत में विश्व दूर दूर तक फैलेगा। हमारे इतिहास में भी इसका वर्णन है कि इधर मलेशिया तक, सिंगापुर मलेशिया, ये भारत ही था, वृहत्तर भारत बोलते हैं उसको, विशाल भारत, इधर दूर दूर ये जो आजकल ईरान, इराक और ये मुस्लिम कंट्रीज है, ये सब मुस्लिम रिलीजन तो था ही नहीं, ये सब दूर दूर तक भारत था, उधर एक रशिया तक, तो भारत में कितने बच्चे होंगे देवता। तो हम इसको ध्यान में लाए तो बहुत अच्छी आत्माएं कभी भी हमें दिखाई देंगी। तो हम सभी का कर्तव्य है अपनी वृत्ति को बहुत श्रेष्ठ बना देना, इससे ऑटोमेटिकली हमारे द्वारा सेवा होती रहेगी, और जिसकी वृत्ति जितनी श्रेष्ठ होगी, ये बिल्कुल सुंदर नियम है, जो जिस भावना से दूसरों को देखेंगे वो भी उसी भावना से उनको देखेंगे। हम देखते हैं बहुत खराब व्यक्ति है तो वो भी हमारे लिए ऐसा ही सोचेगा, हम सोचते हैं बहुत महान आत्मा है, सब अच्छे हैं, तो वो भी हमारे लिए ऐसा ही सोचेगा। इसलिए संगठनों में अपनी वृत्ति को अच्छा रखने से टकराव नहीं होते, तो टकराव जीवन के लिए बहुत बुरी चीज है। यहाँ टकराव है हाँ तो जीवन का सारा संसार ही खत्म हो जाता है, चाहे वो परिवार हो या और कोई हो, जीवन पूरा सूखा बन जाता है, न योग लगता है, न ज्ञान में रस रहता है, न सेवाओं में वृद्धि होती है। इसलिए बाबा की ये बात याद रखनी है बहनों को, जिस स्थान पर निमित्त आत्मा के वाइब्रेशंस बहुत सुंदर होंगे और स्थान के वाइब्रेशंस बहुत सुंदर होंगे, वहाँ सेवा तेजी से बढ़ेगी। इस सेवाओं में ना और तरह से हम मेहनत करें, वहाँ वाइब्रेशंस बनाए सेंटर्स के अपने, और ऐसा समय अब भी है और आ रहा है कि लोग वही लेने आते हैं, और उसी ढंग से दें जो लोगों को जरूरत है। हम वैसा ही कोर्स दे दें जैसा हमने लिया है, वो नहीं, हर चीज को समय अनुसार बदलना चाहिए। यदि समय अनुसार हम चीजों को नहीं बदलते तो उन चीजों की वैल्यू समाप्त हो जाती है। मान लो अब ट्रेन चल गई, कार चल गई, प्लेन चल गई, और कोई कहे मुझे तो घोड़े पे चलना है, बैलगाड़ी पे यात्रा करनी है, 100 साल पहले जो प्राचीन संस्कृति है उसको कायम रखना है मुझे, तुम सब ने उसे छोड़ दिया है, तो दिल्ली कब तक पहुंचेगा वो, जब प्रोग्राम पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए समय अनुसार कोर्स देने के तरीके को चेंज करें, जैसे लोग आपके पास आए उनकी जो प्यास हो, कोर्स उस प्यास को बुझाने वाला हो, जिसको बाबा पहले कहते थे किसी को लगी तो हो प्यास और तुम उसे खिलाओ अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, वो खा तो लेगा और प्यास। इसलिए ये पहचान कर इसको क्या चाहिए वैसा ही ज्ञान देंगे। ओम शांति।